दिखाने की चेष्टा की, साधारण लोग जिसे भक्ति कहते हैं शास्त्र में उसे भक्ति नहीं कहते। कोई शिव जी के मंदिर में जाकर चौकसा दबा रहा है, अजय प्रभु मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए तो 125 रुपये का बताशा दूंगा, चढ़ाऊंगा, ये सब भक्ति नहीं। भक्ति से कोई इसका संबंध नहीं। जब तन से, मन से, वचन से, स्मृति भावना से जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनसे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही केवल, उनको प्रसन्न करने के लिए अपने किसी कामना की पूर्ति के लिए नहीं, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हरि गुरु वैष्णव के आनुगत्य में निरंतर जमयी जब वो चेष्टा होती है तब उसे भक्ति कहते हैं। और जब उसमें और भी कुछ लग जाता है अपनी लौकिक किसी भी कामना से, वो नहीं होनी चाहिए। और ज्ञान कर्म योग तपस्या के द्वारा अच्छा अधिक न हो, बिना कर्म के भक्ति नहीं होगी, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होगी, बिना योग के भक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं। जैसे भगवान सब प्रकाश है, अपनी इच्छा से ही प्रकाशित होते हैं, चाहे वो भक्तों के हृदय में आते हैं अथवा चरतिकल में अवतार लेते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं। इसमें कुछ कारणों का इन्होंने विवेचन किया हमारे पूर्व वक्ता ने, किंतु असल में वो होता है, वो परम रसिक है, परम रसिक और बड़े दयालु हैं, इसलिए इस लीला में जगत में और अपनी लीलाओं को उतार उस समय के लोगों पर कृपा करते हैं और पीछे वालों के लिए भी अपनी लीला कथाओं को छोड़ते हैं भागवत इत्यादि के रूप में, जिसका श्रवण करके लोग भक्ति प्राप्त करके गुरु वृंदावन धाम का। तो इसी की सिलसिला में कड़ी में हम लोगों ने ये भी बतलाया कि और की तो बात, महाराज हरिश्चंद्र गति की श्री महाराज श्री त्यागी हो गए हैं, जो अपने सत्कर्मों से प्रसिद्ध हैं उनको भक्ति से तनिक भी कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। बल्कि विश्वामित्र जी ने कृपा करके हरिश्चंद्र को थाले से रास्ते पर लाया, उनका सर्वस्व ले लिया, स्त्री और पुत्र को भी भिगवा दिया, पुत्र को सांप से डसवा करके मरवा भी दिया, तो भी उनकी अंधता और ममता शरीर के पति नहीं गई। तब उन्होंने कृपा करके देखा ये रामचंद्र जी के वंश में, राम उनके वंश में आए, इसलिए कृपा कर। इसलिए इन लोगों का भक्ति से कोई संबंध नहीं है, स्वर्ग जाकर के फिर लौट आएंगे। किंतु और भी बतलाया, और की तो बात क्या, महाराज ध्रुव जो 6 महीने के अंदर में भगवान की प्राप्ति कर ली, उनको भी भगवान की कोई सेवा नहीं मिली, बल्कि उनकी इच्छा थी सारे विश्व का मैं राजा बन जाऊं, वो राजा बन गए 36,000 वर्ष के लिए। पीछे इसके लिए पछताए भी, इसलिए इनकी भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं है, कर्म मिश्रित है और अपनी कामना। जब ये सारी कामनाएं दूर हो जाएंगी और कृष्ण के सुख के लिए ही सारी चेष्टाएं होंगी, तब वो शुद्ध भक्ति होगी। श्रीमद् भागवत में कल मैंने बतलाया था, भक्तों का वर्गीकरण किया गया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त और प्रेमास्पद भक्त। ब्रज के लोगों का की जो भक्ति है वो बहुत अतीत है, इनमें से किसी से भी नहीं है, इनसे अतीत है। और गोपियों की तो भक्ति है ही है, ये इसके समान और कोई नहीं। तो इसलिए ज्ञानी भक्त पहले समझिए, ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं। एक जो मुक्ति के लिए चेष्टा करते हैं वो ज्ञानी है, और ज्ञानी भक्त होता है वो मुक्ति नहीं चाहता। उनकी भक्ति में ऐश्वर्यमयी भक्ति उसमें होती है। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, नृसिंह भगवान है, इसलिए उनकी भक्ति ऐश्वर्यमयी कहलाती है। जैसे प्रहलाद महाराज जी, वो देखते हैं नृसिंह भगवान प्रकट हुए, नृसिंह जी ने इनकी रक्षा की, किंतु प्रहलाद जी ने उनकी कौन सी सेवा की? पैर दबाया ना, उनको कुछ खिलाया पिलाया, एक ग्लास पानी भी दिया, कोई भी सेवा नहीं कर सके। क्यों? प्रहलाद जी की ये मानना है कि भगवान जो विष्णु इत्यादि के आधार हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनको भूख नहीं लगती, उनको संसार की कोई भी चीजें स्पर्श नहीं करती, इसलिए वो क्या सेवा करेगा? वो सेवा नहीं कर सकते। इन्हीं की कोटि में, ज्ञानी भक्तों की कोटि में भीष्म पितामह भी आते हैं, जो अपने बाणों से कृष्ण के शरीर को छलनी कर दिया और उनके भक्त अर्जुन को भी। और अंत में उसी भीष्म की प्रतिज्ञा के लिए उनको अस्त्र उठाना पड़ा। क्यों? तो भी उनको भक्त क्यों माना गया? उनको तो अस्त्र मानना चाहिए। भक्त इसलिए माना गया कि उस समय भी चाहते तो अर्जुन का वध कर सकते थे, महाभारत युद्ध जीत सकते थे, किंतु सब समय अर्जुन के पक्ष में थे, आशीर्वाद ये दिया करते अर्जुन तुम्हारी युद्ध में जाएगा। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसे भीष्म पितामह की महान भावता देखी जाती है, उनकी भक्ति देखी जाती है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं तो सब तो मानते हैं, किंतु पांडवों में से एक किसी को नहीं मार सके। उनके पास में और गए भीष्म पितामह जी, आप सब समर्थ मानते, आप लड़ते मेरी ओर से है, पांडवों की विजय चाहते हैं, इसलिए पांडवों का आपने कुछ नहीं किया, कोई भी पांडवों में से मरा नहीं, और मुझे मृत्यु का संदेश है, इसे कभी शायद मैं मर जाऊं। उन्होंने कहा तुम शंका मत करो, तुम कल सवेरे आधी रात में अपनी पत्नी भानुमती को लेकर के आना, मैं ध्यान में रहूंगा, वो आकर के हमारे सामने आएगी और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा, फिर तुम्हारी विजय हो जाएगी। दूसरे दिन संध्या के बाद से घना घोर वृष्टि और तूफान आरंभ हुआ, जैसे अमेरिका में चल रहा है तट प्रांतों में, घना घोर वृष्टि और तूफान। दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कहा कि इस भयंकर दुर्दशा दिन में हम लोग कैसे जाएंगे, कल चले। और कृष्ण ने वो द्रौपदी के पास में गए और उनसे कहा अभी तैयार हो जाओ, अभी एक जगह चलनी है आधी रात में। पर द्रौपदी को रथ में बिठलाया और उसको लेकर के सीधे जहां भीष्म पितामह की छावनी थी वहां गए आधी रात में, वर्षा में भी, और द्रौपदी को वहां उतार करके फिर रथ में बैठ गए और उनको वहां पर पहुंचा दिया। वो वहां पर पहुंची घूंघट निकाल करके, जिसे उनको देख न सके, उसका मुंह पहचान न सके। और जब भीष्म पितामह जी कुछ आहट उनको मिली, उनका ध्यान भंग हुआ तो देखा ये ओ भानुमती शायद आ गई, दुर्योधन लेकर के आया। अखंड सौभाग्य की भव। और जब इतना कहा तो द्रौपदी जी ने अपना कुंचल उठा दिया। अरे तुम कैसे आ गई पंचाली, कैसे आ गई? जरूर है तुम्हारे पीछे कोई, वो कहाँ है? रथ में बैठे हैं भीष्म पितामह, गए उनको लाए। धन्य प्रभु आपकी महिमा, ऐसे भीष्म जी भक्त हैं, किंतु ज्ञानी भक्त हैं। भगवान की कोई सेवा न कर सके। सनक सनंदन सनातन के लिए भी कहा जाता है ऐसे ही ज्ञानी भक्त हैं। ज्ञानी नहीं तो सकता है कभी हो। सुखदेव गोस्वामी के लिए भी आप कहा जा सकता है कि अपने प्रथम जीवन में नैर्गुण्य के उपासक हो। निर्गुण ब्रह्म माने ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। जिन्होंने भागवत जैसी रसिक भ्रमर की और गोपी की वेणु की जुगलगीत को श्रवण कराया, और जो राधा नाम करने से ही 6 मास की मूर्छा चले जाते थे, इनके लिए ऐसे सब्जन हम लोग व्यवहार नहीं कर सकते। पहले ही पहले पूर्व जीवन में ऐसा देखा जाता है, तभी अंत जीवन जैसा है उसी को हम मान रहे। इसलिए यह रसिक शिरोमणि के भागवत के वक्ता, इसलिए ऐसा। अब हम प्रहलाद महाराज की भक्ति का स्तर, उनका जीवन चरित्र संक्षेप में हम लोग बतलाना चाहते हैं कि इनकी भक्ति ऐश्वर्यमयी थी। इनके प्रभु विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, को भी आदि सृष्टि करने वाले, सब कुछ करने में समर्थ है। बस इनसे प्रार्थना किया जा सकता है, इनकी स्तव पूर्ति किया जा सकता है, वे हमारा पालन पोषण करें। किंतु ये अभी जैसा बतलाया गया, उनको भूख लगती है, वे थकते हैं, इनको ये ज्ञान दें। इसी प्रकार से हमने और उनका भीष्म पितामह इत्यादि के संबंध में मैंने बढ़ा, तो इनकी शिक्षाओं में हम देखते हैं कि गुरु शुश्रूषा गुरु की पहली ये बतलाई गई। सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लेने के बाद में विषम रूप में उसकी सेवा, जो कुछ भी लाभ हो सब गुरु को समर्पण करना, क्योंकि वे कृष्ण को समर्पण करते हैं। साधु संग जरूर होना चाहिए और कृष्ण की आराधना भी होनी चाहिए। हरि कथा के प्रति आदर होना चाहिए। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी ने बतलाया। अब हम इसके आगे हम विचार कर रहे हैं। यहां पर ऐश्वर्यमयी भक्ति न हो। प्रहलाद महाराज जी सिद्ध हैं, साधक नहीं है, सिद्ध हैं, किंतु लोगों को उन्होंने शिक्षा दी है। अम्बरीश महाराज के संबंध में हम लोग अब विचार करेंगे, इनकी भक्ति किस स्तर की है। यद्यपि वे साधक हैं, किंतु साधक होने पर भी प्रहलाद महाराज जो सिद्ध भक्त हैं उसे भी श्रेष्ठ बतलाया गया है। किस लिए? उस अर्थों में है जैसा कि इन्होंने बतलाया, श्रवण कीर्तन स्मरण प्रहलाद महाराज जी ने किए, किंतु समस्त अंगों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा तन मन वचन और इसके बाद भावना से सारी चेष्टाओं से कृष्ण की सेवा। दूसरी बात एक और है उनके जीवन चरित्र में, प्रहलाद महाराज जी नृसिंहदेव का दर्शन किया और साधक अम्बरीश का संबंध है ब्रज से, मधुवन में रहते थे, ब्रजमंडल में सर्वत्र जाते थे, राधा कुंड श्याम कुंड नंदगांव बरसाना इत्यादि सभी देश उनकी परिक्रमा करते थे। तो उनकी भक्ति कैसे होगी समझे, इसलिए उनकी भक्ति कुछ ब्रश संबंधी कृष्ण से डायरेक्ट, और वो समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते, उनकी से विग्रह का भी सेवन करते थे, और तो काम राज्य इत्यादि चलाना था वो मंत्रियों के द्वारा पुरोहितों के द्वारा संचालन करते, और अपने क्या करते थे स्वयं ठाकुर जी का मंदिर अपने हाथों से मार्जन करते थे, धोते थे, और भगवान के लिए जो कुछ सेवा है अर्चन से लेकर सारी सेवाएं अपने आप करते थे, नौकर चाकर किसी दे करके नहीं। यदि हमारे घर में ठाकुर जी हैं तो कुछ महीना दे करके एक ब्राह्मण को या किसी को रख लो, ये पूजा ठीक नहीं है, और काम वेतन दे करके कराओ, किंतु ठाकुर जी की जो सेवा है गौण मत बनाओ, खुद कर जैसा कि ये करते। अब इनके जीवन चरित्र के संबंध में कौन बोलेगा,
विशाखा विधि में वर्किंग डे है इसलिए शायद अभी लोग नहीं आए, किंतु धीरे धीरे 7 बजे तक शायद सभी लोग आएंगे। तो अभी हम लोग अपना भक्ति का विचार जो कहना चाहते थे कुछ बतलाएंगे। मैं समझता हूँ कि 3 दिन में ये सब हरि कथाएं समाप्त नहीं होती, कम से कम 7 दिन होता तो कुछ हम लोग परिवेशन कर सकते, किंतु हम लोगों को इधर जम्मू जाना है और इधर स्टेज भी खाली नहीं था, इसलिए संभव पर नहीं हो सका। अगले वर्ष यदि संभव होगा तो 5 दिन के लिए ये लोग व्यवस्था करेंगे, तो हम लोग 5 दिनों तक जो रह गई हरि कथा करेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि की कथा अनंत है, जितना कहा जाए ये कम नहीं हो सकती, पूरा कहा नहीं जा सकता। कृष्ण भी स्वयं यदि वर्णन करें, यदि सहस्त्रान भी अपने हजारों मुखों से इस हरि कथा को कहें तो भी अनंत काल में ये हरि कथाएं समाप्त नहीं होगी और उनका फल भी ऐसा ही है। तो कल हमने भक्ति की परिभाषा बतलाकर और भक्ति के तारतम्य के उपलक्ष्य में उसकी कड़ी में हम लोग महाराज अम्बरीश की बात बतलाई। प्रहलाद महाराज की जैसे कल बतलाया गया था, वो केवल अपने प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु को की कथा सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उनकी महिमा स्तौल स्तुति इत्यादि और स्मरण कर सकते हैं, और इंद्रियों से सेवा करने की संभावना नहीं है उनकी। किंतु महाराज अम्बरीश एक साधक भक्त होते हुए वृंदावन में बास कर और वहीं पर ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हुए सभी क्षेत्रों में गए और मन से कृष्ण की कथा का स्मरण करना, वाणी से उनका गुणानुवाद करना, सिर से उनका भी अभिनंदन करना, कान से उनकी हरि कथा सुनना, हाथों से उनका मंदिर मार्जन करना, पैर को किस काम में लगाएंगे, तो पैर को भी काम में लगा दिया, वृंदावन की धाम परिक्रमा में लगा दिया। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया होने पर भी अब इनसे श्रेष्ठ कुछ भक्तों का आप हम लोग विवरण करें। आप लोगों ने महाराज चित्रकेतु का नाम सुना था, किस प्रकार से वो सिद्ध हुए और किस प्रकार से वो वित्रासुर के जन्म में आए, और वित्रासुर के जन्म में रहने पर भी उनकी भक्ति का गंध मात्र भी नष्ट नहीं हुआ, असुर हुए किंतु भक्ति की जो उन्होंने बात कही है उसमें हम सूक्ष्म रूप से विचार करने पर देखते हैं गोपियों के प्रेम का कुछ उनमें गंध है जो अम्बरीश महाराज जी के भी चरित्र में नहीं सुना जा। इस पर हमारे और उनके परवर्ती जन्म वित्रासुर उनकी भक्ति की बात सुनी। हम लोगों ने इस उपाख्यान को इसलिए कहा कि अम्बरीश महाराज की भक्ति की अपेक्षा भी वित्रासुर की भक्ति का कुछ वैशिष्ट है, उनकी भक्ति में कुछ गोपियों के भावों की गंध है। प्रिय प्रिय वो विशुतंग विषन्ना, जिस प्रकार से अपने विदेश गए हुए पति के विरह में तड़फड़ाती है, उनका गुणान बात करती है, उनका चिंतन करती है और आ रहा है ऐसा जान करके अपनी सेवा के लिए प्रस्तुत रहती है, इसी प्रकार से भक्त का भी तन मन और वचन से जितनी भी क्रियाएं हैं और उसमें भी गोपी भाव के अनुसार में यह सर्वोत्तम भावना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इस उपाख्यान का वर्णन किया गया, यहाँ पर कि वित्रासुर का उपाख्यान है। अब हम बिना भगवान नाम के कोई भी साधन फलदायक नहीं है, यद्यपि भक्ति के बहुत से अंग हैं किंतु उन सब में रसिक तत्वज्ञ अपने से अधिक श्रेष्ठ वैष्णव के अनुगत्य में नाम करने पर वह नाम प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ को प्रदान करता है। संक्षेप में श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी नाम की महिमा के संबंध में, जितने विष्णु का जो नाम है वो 10,000 बार यदि लिया जाए उसका जो फल है वो एक राम नाम के बराबर होता है, और राम नाम 3 जो जपा जाता है तो कृष्ण नाम का 1 फल है। और वे कृष्ण क्या नाम जपते हैं?
राधे राधे,
राधा जी का। इसलिए कृष्ण की भी आराध्या देवी राधिका जी का नाम है, वो राधा राधा जपते। इसलिए एक राधा नाम में सब कुछ जितना है सब कुछ में भरा हुआ है। अब हम लोग समय तो बीत गया, तभी मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूँ कि चित्रकेतु महाराज जी की अपेक्षा भी सिद्ध भक्तों में हनुमान जी प्रेमी भक्त कहलाते हैं। आप लोग रामायण से देखेंगे, वाल्मीकि रामायण से, तुलसी रामायण से और जी रामायण से, किस प्रकार से हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहे और राम की कैसे सेवा की, उनके प्रभु को भूख भी लगती है। वनवास के समय में फल मूल कंद दबा करके इनकी सेवा कर, इनके प्रभु थक भी जाते हैं, इनकी चरण सेवा भी करते हैं। युद्ध के समय में अपने पूंछ को लंबा चौड़ा बनाकर प्राची बना दिया, उसमें कोई घुस न सके। जब शक्ति लगी लक्ष्मण को तो हनुमान ही, पहले तो रावण का जो चिकित्सक था सुसेन वैद्य को घर के समय उखाड़ करके ले आए, और उसके कहने से हिमालय पर्वत पर गए और वहां से बूटियों को जो संजीवनी बूटी मृत संजीवनी बूटी इत्यादि को कौन सा है, सभी तो जल रहा है, सब पर्वत को उखाड़ लिया
और रास्ते में पड़ा था पहले उस राम राम करके बड़े शोकग्रस्त हो गए भरत जी। फिर भरत जी ने उनसे पूछने पर उन्होंने बतलाया किस प्रकार से युद्ध हो रहा है उनके लिए मैं संजीवनी बूटी जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारे प्राण पर बैठिए मैं अभी भेज दूँ। उन्होंने कहा नहीं मैं अपने आप चला जाऊंगा। वहां गए सवेरे होने के पहले और संसार से उसकी चिकित्सा से लक्ष्मण ही उठे। राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया गया मेघनाथ ने बाना था या राम राम और उस समय में सवेरे होने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी किंतु ये गरुड़ को बुला ले आए और गरुड़ जी के आने के साथ साथ में इस प्रकार से लंका का दहन किया और फिर सबंस ध्वंस कराकर और अयोध्यापुरी में ले आए। इसके बाद ही उनकी सेवा जारी रही बिना सेवा के रह नहीं सकते।
वही कहानी बता दी
कभी राम लक्ष्मण सीता जी लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न ने उनको सब सेवाएं बंद कर दी आपने बहुत सेवा की अब हम लोग करेंगे क्योंकि कोई भी तो सेवा दे दो उन्होंने कोई सेवा नहीं दी कहे कोई भी एक सेवा दो तुम चुटकी बजाने के लिए हमको सेवा दे दो मैं चुटकी बजाऊं क्योंकि राम को कभी जम्भाई आ सकती है। उन्होंने सोचा जे राम को तो कभी जब जम्भाई आती नहीं अच्छा तो तुम चुटकी बजा। हनुमान जी दिन रात चुटकी बजाने लगे न जाने कबूल को हो जाए और उनको आने लग गई थी
जम्भाई।
फिर उनकी सारी सेवा बंद हो गई अंत में राम के कहने से उनको सेवा में मिली बहुत सी उपाख्यान है किंतु ये हनुमान जी प्रेम से सेवा करते हैं किंतु राम का आलिंगन नहीं कर सकते। प्रभु का सब समय यही रहेगा उनका जो मैं मेरे स्वामी हैं मैं उनका दास एक थाल में भोजन नहीं कर सकते कोई मीठी वस्तु भोजन करके फिर उसको निकाल करके कृष्ण के मुख में नहीं दे सकते। जहाँ सीता जी रहेगी वहां पर ये नहीं जा सकते इसलिए पांडवों को श्रेष्ठ पथ लाया गया। अभी ये लोग सब इनसे बुलवाता किंतु कम से कम 3-4 घंटा समय लगता है इसलिए मैं स्वयं ही संक्षेप में बतला रहा हूँ क्योंकि 7:30 बजे खत्म करना है। 8 बजे के पहले हमारे ब्रह्मचारी लोगों को जम्मू के लिए जाना है इसलिए संक्षेप में बतला रहा हूँ। अगले वर्ष फिर आने पर विशेष रूप में इन कथाओं का इसके बाद में इनसे श्रेष्ठ लोग कौन है पांडव लोग हैं। अर्जुन कृष्ण के साथ एक पलंग पर सोने वाले हैं एक थाल में भोजन करने वाले हैं इतना ही नहीं राम ही कृष्ण के रूप में आकर और अर्जुन का रथ चलाते हैं उनके घोड़ों को धोते हैं। अर्जुन आदेश देता है रथ को बीच में ले चलो ले जाते हैं और उनके हनुमान को भी उनकी ध्वजा पर बैठा करके उनकी सेवा में नियुक्त कर देते हैं। अपनी बहन सुभद्रा जी की भी शादी अर्जुन से कर करके उनके साले बन जाते हैं संबंधी बन जाते हैं। इस तरह से पांडव लोग उनसे श्रेष्ठ हैं। उनमें पांडवों में भी द्रौपदी जी और अर्जुन श्रेष्ठ हैं। उन अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध में जब विश्व रूप दिखलाया तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे आज से आपको सखा नहीं कहूंगा मैंने अपराध किया अपने घोड़ों को भूलवाया रथ चलवाया आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए और मैं सखा इत्यादि नहीं आपको कहूंगा इस तरह से प्रार्थना कर। इनकी अपेक्षा जादव लोग श्रेष्ठ हैं। उन जादवों में भी सर्वश्रेष्ठ उद्धव जी हैं और जादवों की पत्नियां हैं उनकी पत्नियां कैसी हैं कितनी भक्तिमती हैं ब्रज की कथाओं को उन्होंने सुना है
इसलिए जबकि कृष्ण रंगशाला में पहुंचे उस समय कुबल्यापीर हाथी को के दांतों को उखाड़ कर उसे मारा, रक्त के छींटे लग गए और इसके बाद में उस महाव को भी मारा, जो जो रक्षक आए उनको मारा और रणभूमि पहुंचे। चारणमस्तिक और बड़े बड़े वीर पहलवान उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस ने इशारा किया और उस समय में चारणमस्तिक ने कृष्ण और बलदेव को पकड़ करके खींचा अखाड़े में। उस समय में कृष्ण और बलदेव जी कहते हैं, हम लोग कभी दूध मुंह हैं, बच्चे हैं, तुम लोग बड़े बड़े पहलवान हो, इसलिए हम अपने साथियों के साथ में लड़ेंगे या हम अपने समवयस्क से लड़ेंगे, आप लोगों से नहीं। किंतु उन्होंने जो पुतना को मारा, बकासुर अघासुर सबको मारा, वो बच्चा नहीं है। इसलिए कंस की प्रसन्नता के लिए हम लोग लड़ेंगे। फिर लड़ाई जब होने को आरंभ हुई, उसी समय में जादों की पत्नियां जो थी बड़ी भक्त थी, नहीं घोर अधर्म हो रहा है, इस सभा में जो रहेगा उसको भी अधर्म लगेगा, इसलिए सभा में नहीं जाना अच्छा है। और देखो तो कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण और बलदेव कितने सुंदर हैं, गोपियां धन्य थी जो ब्रज में उनका दर्शन करती हैं, उनके साथ में रास रस आते हैं। और हम लोग दुर्भागा कृष्ण को मारने के उद्देश्य से कंस इन असुरों पहलवानों को बुलाकर के इनको मरवाना चाहता है और ये लड़ रहे हैं। कृष्ण को मुख क्रोध से तम तमा रहा और बलदेव का, और गोपियां उनको मुस्कुराते हुए रास स्थल में नृत्य करते हुए उनको देख रही हैं, वर्णन करने लगी उनके रूप और ये सब को, इसका श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। एक उसका श्लोक संक्षेप में वर्णन करते हैं, इसके बाद में हम दूसरी तरफ में चलेंगे। क्या है
श्लोक पहले का?
वो जदैन्य लिंग गुड़ा पुराण पुरुषा बन चित्र माल्य जापाल सबलम प्रयंश वेणु विग्रियांचती गिरित्री रमाट। जो शंकर जी लक्ष्मी जी जिनकी चरणों को सच में पलोड़ते हैं और सेवा आराधना करते हैं, वो लोग भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। ब्रज में कृष्ण का दर्शन करना वो और बड़ा भारी मुश्किल है तीनों लोगों के लिए। ये आज वो वृंदावन में गाय पालन गायों को चराते हुए बलदेव के साथ में सखाओं के साथ में चरणों में अपने कितने प्रकार के चिन्ह लेकर के पृथ्वी पर घूम रहे हैं। और जगत का जितना निखिल सौंदर्य है इस कृष्ण में है। ब्रज के केवल सौभाग्यवान ब्रज नारी और ब्रज ही के लोग केवल उसका दर्शन कर सकते। जो दोहने वाहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनाभिरुचितो ओखन मार्जनादो गायंती चैन मनुरक्त धियो अश्वकंठा धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्तम जाना। ये गोपियां कैसी हैं, कृष्ण के चित्त के लिए ये रथ स्वरूप हैं, कृष्ण के चित्त के ऊपर में सब समय चढ़ी रहती हैं, अर्थात कृष्ण सब समय इनका स्मरण करते हैं। यही नहीं, गोपियों के भी चित्त में ये कृष्ण चढ़ते हैं और कृष्ण के चित्त में ये गोपियां चढ़ी रहती हैं सब समय निरंतर एक दिन उनको स्मरण। जा दोहने वहने दोहन काल में जब गोदहन करती है तो गोपियां क्या करती हैं, गोविंद दामो करमा बेटी गोविंद दामो करमा बेटी गोविंद दामो करमा बेटी गोविंद दामो करमा बेटी। जब घर को लिपती पुती हैं, लिपती पुती हाथ से तो करती हैं, किंतु गोविंद दामो धर्मा गोविंद दामो धर्मा। कोई सवेरे में सुख सारी को पढ़ा सवेरे उठ करके क्या पढ़ा रही है?
गोविंद रामो दरमान बेटी, गोविंद रामो दरमान बेटी।
यशोदा जी सती मंथन करते हुए अपने बच्चे का गुणगान करते हुए, ये कैसा बच्चा सुंदर है, कैसे मक्खन इत्यादि चुराता, उसका वर्णन करती हुई और ध्यानमस्त होकर के कहती,
गोविंद दामोदर बेटी, गोविंद दामोदर बेटी।
कोई पल्ले में अपने बच्चे को झुला रही है और पल्ले में झुलाते हुए करी है, सो जाओ नहीं कहती,
गोविंद दामोदर बेटी, गोविंद दामोदर
सो जाओ नहीं,
गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
दिन रात उनकी ऐसे ही चिंता रहती है। आप लोग भी क्यों नहीं भगवान का नाम करते हुए चित्त में उनका स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए क्यों नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं? आप लोग भी ऐसा कर सकते, जीवन का यही लक्ष्य बना कर। के बाद में कहता है कि ये गोपियां जब कृष्ण गोचारण के लिए वन से निकल करके जाते हैं तो जाने के समय, और जब वन से गायों को चरा करके आते हैं, निर्गम्य तूर्णम अबला पतिपूर्ण पुण्य सस्मित मुखम सदयावरू, उस समय कृष्ण जब आ रहे हैं घर से जल्दी से निकल करके कुंजों में अटारियों पर जंगले के सामने दरवाजे के सामने निकल करके कृष्ण का दर्शन करने लगे और अपने नैने से उनकी मंगल आरती उतारती हैं और कृष्ण भी हंसते हुए मुस्कुरा करके अपने नैनों से ही उनकी इस आरती को, ये धन्य ब्रज की स्त्रियां हैं। उद्धव की तो बात क्या, बस मैंने संक्षेप में कुछ कहा था। उद्धव ने जब गए, कृष्ण ने उनको माता पिता के सांत्वना देने के लिए ऊपर से भेजा, किंतु बात ये नहीं थी। गोपियां परस्पर गृह में एक दूसरे से कृष्ण की चर्चा करके अपने भार दुख के भार को हल्का कर लेती, किंतु कृष्ण मथुरा में या द्वारका में किससे बातचीत करेंगे, कोई भी उनके पास में जो उनके दुख और दर्द को समझ सके, कोई नहीं समझ सकता। उद्धव को भेजा, किस लिए भेजा? उद्धव जाए वृंदावन में, ब्रज में जाए, और जहाँ पर मैंने प्रेम की पाठशाला में मैंने शिक्षा ग्रहण की है प्रेम की, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा पंडित हो, ढाई अक्षर प्रेम है प र आधा म, जो इसको पढ़ लिया वो पंडित है, बाकी सब बेवकूफ है, नहीं जानते। तो मैं भेजू उद्धव जाकर के गोपियों की पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में जाए और वहां पर पढ़ करके आए, प्रेम समझे कि प्रेम क्या है, तब उसे दो चार बातें कर सकूंगा, तब वो हमारी बात को समझेगा, इसलिए भेजा। उद्धव गए किंतु प्रेम